प्रातः क्लास चल रहा था 5/11/1966 शनिवार को सातवें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि मूल बात समझाने की है कि बाप कौन है जिस बाप पर निश्चय करना है और बाप से वर्षा मिलता है। वो बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देता होगा। हद के बाप हद का वर्षा देते हैं, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है। हद का बाप एक जन्म का वर्षा देता है, बेहद का बाप जन्म जन्मांतर का वर्षा देता है। परंतु बेहद के दो बाप हैं, एक है आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु निराकार आत्माएं भी निराकार, बाप भी निराकार। निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए है? साकार में चाहिए, क्योंकि जो आत्माओं का बाप निराकार है उसको तो अपना साकार शरीर है ही नहीं। तो जिसको साकार शरीर ही नहीं है वो साकार शरीर के द्वारा सुख शांति का अनुभव कैसे कराएगा? धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा, करोड़पति अरबपति बाप होगा तो करोड़ अरब का वर्षा देगा। आत्माओं का बाप निराकार है, सदैव निराकार। ऐसे नहीं अन्य आत्माओं की तरह निराकार ही रहता है, अन्य आत्माएं तो साकार भी बनती है क्योंकि साकार ही धारण करती है। साकार शरीर से, शरीर की कर्म इंद्रियों से सुख भोगती है। तो बाप भी वर्षा देने वाला कैसा चाहिए है? साकार चाहिए, परंतु जो साकार बाप है जिससे वर्षा मिलता है सुख और शांति का, वो बाप मनुष्य शक्ति का बाप है। मनुष्य शक्ति का बाप माने बीज है और ये शक्ति जैसे अनादि है, ऐसे मनुष्य शक्ति का बाप भी अनादि है। अनादि बाप उसका ना आदि है ना अंत है, उसके माँ बाप का भी कोई पता नहीं बता सकता, वो सारी मनुष्य शक्ति का बाप है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि का भी बाप है, परंतु उसका इस मनुष्य शक्ति में कोई बाप नहीं। जो सारी मनुष्य शक्ति में बेहद का बाप है, क्योंकि क्राइस्ट आदि धर्म पिता है तो हद के बाप ही ठहरे। बल क्राइस्ट 200-250 करोड़ मनुष्यों का बाप है। 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस उसे अपना बाप मानते हैं, परंतु फिर भी तो हद है ना। 500-700 करोड़ का बाप तो कोई भी धर्म पिता नहीं। इसलिए वो बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, लेकिन कब देते हैं? तब बेहद का वर्षा देते हैं जब 100% आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। ये आत्मिक स्थिति में स्थित होने की युक्ति कौन बताता है? आत्माओं का बाप बताता है। आत्माओं का बाप सदा निराकारी है, तो वर्षा भी कौन सा देगा? निराकारी वर्षा देता है। क्या है निराकारी वर्षा? निराकारी वर्षा है ज्ञान। वो त्रिकालदर्शी है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है। देहधारी मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते हैं। वो कभी भी जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण तीनों कालों को जानता है, इसलिए ज्ञान का वर्षा देता है। उसके पास अखूट ज्ञान का भंडार है। कैसा अखूट? उस अखूट ज्ञान के भंडार में से सारा ही भंडार कोई निकाल ले तो भी खूटता नहीं। कौन है ऐसा? ऐसी कौन सी मनुष्य आत्मा है जो अखूट ज्ञान भंडार धारण कर लेती है? इसलिए त्रिनेत्री कहा जाता है। दो नेत्र हद के तो सबको होते हैं, लेकिन वो तीसरा नेत्र आत्माओं के बाप से धारण करता है। इसलिए ज्ञान का संपूर्ण भंडार प्राप्त करने के कारण आत्माओं के बाप से पूरा वर्षा लेता है या अधूरा वर्षा लेता है ज्ञान का? है पूरा वर्षा लेता है। पूरा वर्षा ज्ञान का लेने के कारण उसे सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान होता है। कब? जब आत्माओं के बाप को याद करते करते संपूर्ण स्टेज को धारण करता है, बाप समान निराकारी बन जाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है। इसलिए उस उसकी यादगार बनती है। क्या उसकी यादगार बनती है? साकार में निराकार। त्रिमूर्ति के चित्र में वो चित्र भी दिया हुआ है जो साकार भी है और निराकार भी है। कौन है? शंकर। शंकर को तो हाथ पांव है, नाक कान इंद्रियां सब है, और शंकर तो याद में बैठा हुआ है। जो याद में बैठा है वो पुरुषार्थी है या संपन्न है? है? पुरुषार्थी है। तो उसको पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? आत्माओं का बाप, जो पुरुषार्थ की युक्ति बताता है कि तुम सब मनुष्य आत्माएं ज्योति बिंदु हो, मैं तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु हूं। अंतर क्या है? तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो और मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। फिर ये भी कहता है मैं आता ही हूं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी बनाने के लिए। तो नंबरवार जब आता है आप समान निराकारी बनाने के लिए तो कोई 100% निराकारी भी तो बनता होगा। वो कौन? जो 100% निराकारी स्थिति धारण करता है वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप साबित होता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, उसकी पूजा शिव के मंदिरों में यादगार दिखाई जाती है। क्या? शिवलिंग। वो शिवलिंग लिंग है तो बड़ा रूप है, साकार है, और उसका ओरिजिनल यादगार द्वापर के आदि में सोमनाथ मंदिर में मिलता था। क्या था? लाल गोलाकार के पत्थर में हीरा जड़ा हुआ था। वो पत्थर किसकी यादगार है? साकार की यादगार। और उसके अंदर जो हीरा है वो किसकी यादगार? उस निराकार का नाम है शिव। शिव बाप तो कहते हैं न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। कहते हैं या नहीं? क्या मैं पूज्य भी नहीं बनता और मैं पुजारी भी नहीं बनता? तुम बच्चे नंबरवार पूज्य देवता बनते हो और तुम ही पुजारी बनते हो। क्या? तो बताओ द्वापर युग में पहले पहले किसकी पूजा होती है? है? शिवलिंग की पूजा होती है। वो पूजा कौन करता है? है? विक्रमादित्य करता है। तो कोई मनुष्य ही है ना? कौन हो सकता है वो मनुष्य आत्मा? ब्रह्मा की आत्मा। ब्रह्मा की आत्मा। लेकिन बाबा तो कहते हैं जो भी राजाएं द्वापर युग में होते हैं वो सब पतित होते हैं। क्या कहा? द्वापर युग में जो भी राजाएं होते हैं पतित होते हैं या पावन होते हैं? विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? विकारी होते हैं। तो बुद्धि भी उनकी है विकारी होती है। उनकी विकारी बुद्धि में ये बात किसने सिखाई कि शिवलिंग की पूजा करो, मंदिर बनाओ शिवलिंग का? कोई ने तो बताया होगा, बताओ है? विक्रमादित्य के गुरु ने बताया। वो विक्रमादित्य का जो गुरु है वो पहला पुजारी हुआ या नहीं हुआ है? क्योंकि उसके दिमाग में पहले पहले आया। इस दुख की दुनिया में सुख पाने का तरीका है शिवलिंग की उपासना करना, तो वो पहला पुजारी हुआ। उससे पहले पुजारी ने सिखाया भी राजा विक्रमादित्य को कि शिवलिंग की पूजा करो, तो जो पहला पुजारी है जिसकी बुद्धि में पहले पहले आया शिवलिंग की बात, वो कभी पूज भी यहां होगा ना? कब है, कब पूज्य बना? संगम में पूज्य बना। पूज्य बना अपने पुरुषार्थ से बना या आत्माओं के बाप शिव ने बनाया है? पुरुषार्थ से बना। अगर कहें शिव ने बनाया तो शिव सबको बनाएगा या एक बच्चे को बनाएगा? सबको बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, शिव तो रास्ता बताते हैं, युक्ति बताते हैं। क्या? राजयोग की युक्ति बताते हैं। क्या बताते हैं? अपन को आत्मा समझ, ज्योति बिंदु आत्मा समझ, ज्योति बिंदु आत्मा के बाप परमपिता परमात्मा को याद करो। किसको याद करो? परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं, उस पिता को याद करो। अब बताओ, जो परम पिता है उसका कोई पिता नहीं, आत्माओं का बाप, सभी मनुष्य आत्माओं का बाप, उसका कोई पिता नहीं, तो उसका कोई बड़ा बच्चा होता होगा? नहीं, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है तो बड़ा बच्चा कौन है? है कौन? बड़ा बच्चा वो जो शिव बाप की बताई हुई योग की युक्ति में अव्वल नंबर जाए। तो बताओ, 33 करोड़ देवताओं में से कौन सा देवता है जिसकी यादगार मूर्ति दिखाती है कि एकदम याद में बैठा हुआ है? शंकर ही है। और शास्त्रों में भी गाया हुआ है। क्या क्या गाया हुआ है? के शंकर ही एक ऐसी मूर्ति है सभी देवताओं के बीच में जो निरंतर याद में रहने वाली है। जब अपनी संपूर्ण स्टेज धारण कर लेती है प्रैक्टिस करते करते। किस बात की प्रैक्टिस है? राजयोग की प्रैक्टिस करते करते। तो संपूर्ण स्टेज जब धारण करती है तो निराकारी ज्योति बिंदु बन जाती है। शरीर रहते रहते ही ज्योति बिंदु बनती है या शरीर छोड़ करके ज्योति बिंदु बनती है? है शरीर में रहते रहते निराकारी ज्योति बिंदु पूरे युग के लिए बन जाती है जब तक संगम युग रहे, ऐसी स्टेज धारण कर लेती है। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, उसका प्रूफ मंदिर में दिखाया गया है, शिव के मंदिर में। क्या कर्म करते हुए निराकारी या सन्यासियों की तरह कर्म को छोड़ करके निराकारी? कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए निराकारी, लेकिन उसको सारी कर्म इंद्रियां तो दिखाई नहीं जाती। कौन सी कर्म इंद्री दिखाई जाती है? एक लिंग की ही पूजा होती है शिव स्वरूप की, तो वो कामेंद्रिय कही जाती है, जिसका गायन है काम जीते जगत जीत। ऐसे नहीं कहा आंख जीते जगत जीत, नाक जीते जगत जीत, हाथ जीते जगत जीत, क्या जीते? काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते है जगत जीत। लेकिन कैसे जीते? कोई भी इंद्रिय है उस इंद्रिय से कर्म करते हुए अगर मन दूसरी जगह लगा हुआ है, कर्मेंद्रिय की याद में नहीं है, तो कर्मेंद्रिय का फल निकलेगा? नहीं निकलेगा। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, महबूब अपने रास्ते पर जा रहा था कारखाने में, अपनी महबूबा की याद में जा रहा था। कारखाने में जाने के बाद किसी ने पूछा, आपने रास्ते में किसको देखा? कहते मैंने किसी को नहीं देखा। अरे क्या अंधे होके आ रहे थे कि आंखें बंद थी? नहीं, आंखें तो खुली हुई थी लेकिन मन जो है आंखों से किसी को नहीं देखा। तो मन प्रधान इंद्रिय है। क्या दसों इंद्रियों से प्रबल इंद्रिय कौन सी है? मन। जब तक मन अपना कार्य न करे तब तक कोई भी इंद्रिय संपन्न नहीं कार्य कर सकती। तो ऐसे ही काम इंद्रिय के बारे में, ये काम इंद्रिय बड़ी प्रबल है। गीता में भी कहा है इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियों में भी मन बहुत प्रबल है, मन से भी बुद्धि बहुत प्रबल है। मनुष्य की बुद्धि मन के मुकाबले बहुत प्रबल है, और जो भी बुद्धिमान मनुष्य हैं, उनकी बुद्धियों से भी प्रबल वो परमपिता की बुद्धि है, जो कहता है ब्रह्मा के मुख में, गीता में भी लिखा है मन मना भव। क्या कहता है? मन माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। अब बताओ जो निराकार शिव ब्रह्मा के मुख से कहता है मेरे मन में समाजा, तो निराकार शिव ज्योति बिंदु को मन है? है मन? उसको संकल्प विकल्प चलाने की जरूरत है? वो सोचता है या असोचता है? है असोचता है, उसको सोच विचार करने की दरकार ही नहीं, वो तो त्रिकांतदर्शी है। तो बताओ कौन कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा है। हाँ, जिस साकार मनुष्य तन में प्रवेश करता है एक व्यापी होकर, क्या वो साकार मनुष्य तन कहता है मेरे मन में समा जा। और उसका प्रूफ है झाड़ के चित्र में सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है, शंकर। सभी आत्माएं उसके स्वरूप में जाकर के समा रही हैं, क्योंकि जब टोटल विनाश इस सृष्टि का होगा, 500-700 करोड़ का भी विनाश होगा, उस समय सभी मनुष्य आत्माएं ये बात जान जाएंगी क्या कि किसको याद करना है, क्या उसी को याद करना है जिससे हमें साकार स्वर्ग का साकार वर्षा मिलेगा, क्या साकार स्वर्ग का साकार वर्षा मिलेगा, स्वर्ग साकार, स्वर्ग बनाने वाला भी साकार। वो कैसे बनाता है, स्व माने आत्मा, स्वर ग ग माने गए, माने आत्मा कहाँ गई, स्व स्थिति में गई। देवताएं कैसी स्थिति में होते हैं, स्व स्थिति में होते हैं। तो जो अव्वल नंबर स्व स्थिति में जाता है वो ही सारी मनुष्य शक्ति का बीज हुआ। हेवनली गॉड फादर क्रिश्चियंस कहते हैं, क्या कहते हैं, हेवनली गॉड फादर माना हेवन रचने वाला फादर। जो भी बाप होता है धन कमाता है तो बच्चे को क्या देता है, धन का वर्षा देता है। महल माणियां अटारियां बनाएगा तो बच्चे को काहे का वर्षा देगा, मेलवाणियों अटारियों का वर्षा देगा। अब शिव करता है या करता है, शिव जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, शरीर तो है ही नहीं, तो वो तो अकरता है, क्या स्वर्ग बनाने का भी काम नहीं करता, करता है नहीं। तो स्वर्ग बनाने का काम कौन करता है, स्वर्ग का रचयिता कौन है, रचयिता साकार होना चाहिए या निराकार, सृष्टि साकार है तो सृष्टि का रचयिता भी साकार होना चाहिए। परंतु वो ही हो सकता है सृष्टि का रचयिता जो सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को शिव से 100% धारण करे, तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप है जिसको शिव के मंदिरों में शिवलिंग के रूप में दिखाया गया है। वो लिंग साकार भी है और उसमें निराकार ज्योति बिंदु भी है। इसलिए साकारी भी है निराकारी भी है। शिवलिंग निराकारी कैसे है, निराकारी ऐसे है कि उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है। शंकर को तो हाथ पांव नाक आंख कान है क्योंकि वो पुरुषार्थी है। जब तक पुरुषार्थी है तब तक उसको इंद्रियों का भान है, और जब पुरुषार्थ संपूर्ण हो जाता है तो इंद्रियों का भान खत्म हो जाता है, इंद्रियों का रस लेना खत्म हो जाता है, उसका स्वयं इंद्रियों का रस लेना खत्म होगा तब ही उसकी बात का असर पड़ेगा दूसरों के ऊपर। क्या प्रैक्टिकल में खुद पहले ऐसा बने, कैसा कैसा, कि इंद्रियों से कर्म करे परंतु कर्म करते हुए भी जैसे कर्म नहीं किया। आंखें देखती है लेकिन नहीं देखती, कान सुनते हैं लेकिन नहीं सुनते, ऐसी स्टेज बन जाए। क्या कैसी स्टेज बनती है? इस दुनिया को देखता भी है आंखों से और कानों से सुनता भी है उनकी बातें, दुनिया वालों की सारी दुनिया ग्लानिंग करती है। किसकी? जिसमें पतित पावन बाप प्रवेश करता है। धर्म पिताएं भी ग्लानिंग करते हैं, उनके फॉलोअर्स भी ग्लानिंग करते हैं, लेकिन वो ग्लानिंग को सुनते हुए भी नहीं सुनता। तो जब ऐसी इंद्रियों की स्टेज बन जाती है तब वो पूज्य बनता है, वो स्वयं पूज्य बनता है और द्वापर में फिर पुजारी भी बनता है, अव्वल नंबर का पुजारी। पहले उसकी बुद्धि में आता है किसकी पूजा करनी चाहिए, बाद में दूसरों की बुद्धि में आता है। तो वो स्वयं ही पूज्य, स्वयं ही पुजारी। अब बताओ सोमनाथ मंदिर में जो हीरा जड़ा हुआ था वो कौन सी आत्मा की यादगार है? आत्माओं के बाप की यादगार। वो पत्थर बनता है, हीरा तो पत्थर होता है, है? साकार में निराकार है। अरे वो हीरा जो आत्मा है वो कौन सी आत्मा की यादगार है? है हीरा तो हीरो कहा जाता है, उससे ज्यादा चमक मारने वाला ज्ञान की रोशनी का कोई होता ही नहीं, उसी का नाम भारत है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। संगम युग में भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, मनन चिंतन मंथन में लगा रहता है। और देवता बनता है तो अन्य देवताओं की तरह मस्तक में ज्योति बिंदु की याद में रहता है। तो ज्योति बिंदु तो ज्ञान के विस्तार का सार है ना, तो वहां भी निराकारी स्टेज में ज्ञान की रोशनी में है। और द्वापर युग से जब द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं और संघ के रंग से देवताओं को देह अभिमानी बनाते हैं, उस समय भी वो आत्मा ज्ञान की रोशनी में ही रत रहती है, जिसका नाम पड़ता है वेद व्यास। क्या नाम पड़ता है? वेद व्यास। सबसे पहले पहले शास्त्र कौन से हैं? वेद। उन वेदों की किसने रचना की? व्यास ने रचना की। वेदों में भी श्रीमद् भगवत गीता सबसे पहला शास्त्र है, उसमें भी लिखा है व्यास प्रसादात। व्यास के प्रसाद से, व्यास की प्रसन्नता से ये गीता ज्ञान मिला। तो देखो सृष्टि के आदि में भी वो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में संगम में रहता है। जब भगवान इस सृष्टि पर उतरता है आत्माओं का बाप, और द्वापर युग में भी ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रत रहता है। फिर जो वेदों की व्याख्या निकली आरण्यक, जो जंगल में बैठ करके लिखे गए। आरण्य माने जंगल, और उन आरण्यकों की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण आदि निकले, उनकी भी व्याख्या उपनिषद। वो उपनिषदों की भी रचना पहले पहले रचने वाला वही है, और फिर पुराण निकले। पुराणों में सबसे जास्ती कौन सा पुराण प्रसिद्ध है? अरे बहुत बड़ा पुराण है, महाभारत। उसके लिए भी शास्त्रों में लिखा है। किसने लिखा? व्यास ने लिखा। तो देखो, द्वापर के आदि में जो भी ऋषि मुनि हुए, उनमें सबसे बड़ा ब्रह्म ऋषि वो हुआ, ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला। चलो, ये तो मुख से ज्ञान सुनाने की बात हुई, शास्त्र तो बाद में कागज पर लिखे गए, भोजपत्र पर। लेकिन ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में भी समाया हुआ होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल कर्म करने में भी वो आत्मा सबसे आगे जाती है। क्या? इतनी आगे जाती है कि विश्व में कोई भी विधर्मी आत्मा उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। क्या? ज्ञान को सत्य कहा जाता है। सत्य हारने वाला होता है या खत्म होने वाला होता है? है? सदैव रहता है, उसको कोई खत्म कर ही नहीं सकता। और झूठ के पांव नहीं होते, झूठ भाग खड़ा होता है। इसीलिए भारतवर्ष में इतने विदेशी आक्रांताएं आए जिन्होंने भारत में भयंकर लूटपाट की और खून खराबा किया, मार काट की। वो आक्रांताएं भी हार करके अपने अपने देश में वापस चले गए, हार गए। तो कोई हराने वाला था ना? जैसे अलेक्जेंडर के लिए बताते हैं, भारत में आया बड़ी सेना लेकर के, और फिर बाद में चंद्रगुप्त से मुकाबला हुआ और वापस जाना पड़ा, हार गया। ऐसे ही ये तो द्वापर की बात हुई। कलयुग में देखो, आज से 400-500 वर्ष पूर्व अकबर आया, सारे भारत के ऊपर राज्य किया, सभी राजाओं को जीता, लेकिन महाराणा प्रताप को जीत पाया है? थक गया या जीत गया? थक गया, जीत नहीं सका। ऐसे शिवाजी, मुसलमानों के इतने अत्याचार हो रहे थे, भारत में मुसलमानों ने लगभग सारे भारत के राजाओं को जीता, लेकिन शिवाजी छोटे राज्य का राजा उसको नहीं जीत सका। कहने का मतलब यह है चाहे साहित्य के रूप में हो, जैसे द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखी गई और कलयुग में तुलसीकृत रामायण लिखी गई। बाबा ने मुरली में बोला, अपने अपने शास्त्रों में अपनी महिमा कर दी है। क्या जो भी शास्त्र बनाने वाले हुए, उन्होंने जो अपने शास्त्र लिखे उनमें किसकी महिमा की? अपनी महिमा की। माना वाल्मीकि ने जो वाल्मीकि रामायण में राम की महिमा लिखी है, वो कौन सी आत्मा थी? वाल्मीकि वाली आत्मा थी। ऐसे ही कलयुग में तुलसीदास ने राम की महिमा में रामायण लिखी, तो वो रामायण बनाने वाली आत्मा कौन सी आत्मा थी? तुलसीदास। तुलसीदास कौन सी आत्मा साबित हुई? राम की आत्मा साबित हुई। तो इसे सिद्ध होता है कि वो सृष्टि का हीरो पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी हर जन्म में हीरो का ही पार्ट बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? हीरो का पार्ट बजाता है। क्यों? क्योंकि आत्माओं का जो बाप शिव है, उसका बड़ा बच्चा है। इसलिए भारतीय परंपरा में जो भी राजाएं हुए, उनकी परंपरा चली आई कि राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी, वर्षा दिया, या छोटों को दिया? बड़े बच्चों को दिया। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संगम में शिव बाबा ने आकर शुरू की। इसीलिए राम गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापार्थ सर्वसे। हे पृथ्वी के राजा अर्जुन, मनुष्य जितने भी सृष्टि में हैं, वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। जिस रास्ते पर मैंने चल करके दिखाया, उसी रास्ते पर सब मनुष्य चलते हैं। माने सभी मनुष्य मात्र बाप बनकर अपने बड़े बच्चे को वर्षा देते हैं। इससे साबित हो जाता है कि स्वर्ग का वर्षा देने वाला प्रैक्टिकल बाप कौन है? प्रैक्टिकल माने शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करके स्वर्ग स्थापन करने वाला, स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला कौन है? शिव की आत्मा है या कोई मनुष्य आत्मा है? मनुष्य आत्मा है, जो इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। लेकिन वो भी तब बनता है, परमात्मा का टाइटल तब लेता है, परम पार्टधारी आत्मा का टाइटल तब लेता है जब आत्माओं के बाप से पूरा ज्ञान धारण करता है। आत्माओं का बाप शिव जो युक्ति बताते हैं, क्या मनुष्य से देवता कैसे बनना है, वो युक्ति को जीवन में धारण करता है और नर से क्या बनता है? नारायण इसी जन्म में बनता है। कोई डॉक्टर है, वो अपने शिष्य से कहे, स्टूडेंट से कहे कि मैं तुम्हें डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाता हूं, अगले जन्म में डॉक्टर बन जाओगे। कोई इंजीनियर अपने स्टूडेंट से कहता है मैं तुम्हें इंजीनियरिंग की नॉलेज सिखाता हूं, अगले जन्म में इंजीनियर बन जाना। तो कोई बेवकूफ स्टूडेंट होगा, बनेगा है? नहीं बनेगा। ये तो अंधश्रद्धा की बात हो गई। क्या कि इस जन्म में डॉक्टरी पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, अगले जन्म में डॉक्टर इंजीनियर बन जाना? नहीं, शिव बाप अंधश्रद्धा नहीं सिखाते। शिव बाप का ज्ञान अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है, श्रद्धा विश्वास का तो है, लेकिन अंधश्रद्धा की बात नहीं। यही पढ़ाई पढ़ो और उस पढ़ाई की प्रारब्ध मनुष्य से देवता यही बनना है। जो कहते हैं कि यहां हम पढ़ाई पढ़ते हैं ईश्वर की, अगले जन्म में हम प्राप्ति करेंगे, तो वो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, बाप को नहीं जानते। जो बेहद का स्वर्ग का वर्षा देने वाला है और आत्माओं के बाप को भी नहीं जानते पूरी तरीके से, इसलिए पूरी नॉलेज नहीं ले पाते। तो बताया पहले बाप का परिचय लो। जिस बाप को पत्थर ठिक्कर में जोड़ दिया है, डाल दिया है, क्या वो कौन सा बाप है जिसको दुनिया वालों ने पत्थर ठिक्कर कण कण में डाल दिया? कौन है? शूटिंग कहां होती है इस बात की कि भगवान बाप को पत्थर बुद्धियों में डाल दिया, ठिक्कर बुद्धियों में डाल दिया, भीतर बुद्धियों में डाल दिया। भीत माने दीवाल, दीवाल की तरह ज्ञान के रास्ते में अड़के खड़े हो जाते हैं, न खुद ज्ञान लेते हैं न दूसरों को लेने देते हैं। ऐसे बित्तर बुद्धियों में भगवान बाप को डाल दिया है। बाबा बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, कौन बोलते हैं? बाबा। आत्माओं के बाप को बाबा कहा जाता है? कहा जाता है? आत्माओं के बाप को सिर्फ बाप कहा जाता है, उसका कोई दूसरा संबंध नहीं। आत्मा आत्मा भाई भाई, और वो हमारा बाप, ग्रैंडफादर बाबा भी नहीं। वो जब साकार में प्रवेश करता है, मुकर्रर रथ में आता है, तो सारे संबंध बनाता है, बनते हैं। वो हमारा ग्रैंडफादर बाबा भी है, वो हमारा मनुष्य शक्ति में बड़ा भाई भी है। कौन है? जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है, मनुष्य आत्माओं के बीच वो हमारा बड़ा भाई है। बड़ा भाई माने दादा है या नहीं है? बड़ा भाई को दादा कहा जाता है। और आत्मा आत्मा भाई भाई के बाप को क्या कहा जाता है? है बाप कहा जाता है। तो वो है बाप और वो है दादा। कौन बाप? कौन है? आत्माओं का बाप बाप है सिर्फ, दूसरा कोई संबंध नहीं है। और दादा कौन है? हाँ, जिस साकार मनुष्य आत्मा में शिव बाप प्रवेश करते हैं, वो है हमारा बड़ा भाई मनुष्य सृष्टि का दादा, तो दोनों का जब मेल होता है तो कहा जाता है बाप दादा। क्या कहा जाता है? बाप दादा। तो वो जो दादा है वो साकार निराकार का मेल होने के कारण बाबा कहा जाता है। निराकार आत्माओं का निराकारी बाप बाबा नहीं है, वो बाबा बोलते हैं कि पत्थर ठिककर भीतर बुद्धियों में ठोंक करके मुझे रुलाए दिया है। क्या पत्थर बुद्धियों को जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं, काकागा भी नहीं बैठता, बोलते रहते हैं हम आत्मा को कैसे याद करें, बिंदी को कैसे याद करें, बिंदी हमें याद आती नहीं। अरे तो ये कैसी बात हुई? ठीक कर मिट्टी का ढेला, मिट्टी के ढेले में एक ठोकर लगे तो क्या होता है? बिखर जाता है। ऐसे ही जो मनुष्य आत्मा है ज्ञान तो लेती है, ज्ञान में चलती भी है, लेकिन माया की एक ठोकर लगती है और बिखर जाती है, अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। ऐसों में भी भगवान मान करके चलते हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा का क्या हुआ है? 18 जनवरी 69 को परीक्षा आई या नहीं आई? क्या रिजल्ट हुआ? हार्ट फेल हो गया। तो आत्मा बिखर गई ना, बिखर गई तो स्थूल शरीर से भी दूर हो गई। तो देखो ठिककर बुद्धि हो गई। ऐसे ठिककर बुद्धियों की बुद्धि में वो परमपिता जिसे कहा जाता है, जिसका कोई बाप नहीं, उस आत्माओं के बाप का त्रिकालदर्शी का ज्ञान गहराई तक बैठता नहीं। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि जो ज्ञान सुनते हैं दूसरों को सुनाते भी हैं, लेकिन अंदर अंदर मंथन मंथन नहीं करते। क्या हुआ ब्रह्मा की जिंदगी में? ज्ञान का मनन चिंतन मंथन किया है, ज्ञान का रस निकाला। अगर हम जुगाली न करें, चबाएं नहीं, तो रस बनेगा? रस ही नहीं बनेगा तो खून भी नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा तो ताकत नहीं आएगी। वो है स्थूल खून और ये है संकल्पों का सूक्ष्म खून। जितना ईश्वरीय ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करेंगे वो हमारा अपना बन जाता है। क्या मनन चिंतन मंथन नहीं करेंगे, ऐसे ही खाया हुआ खौफ निगल लिया तो उसका रस बनेगा? वो हमारा अपनी ताकत बनेगा? नहीं बनेगा। तो ऐसे ही है, बाप कहते हैं इन पत्थर बुद्धियों ने, ठिककर बुद्धियों ने, भीतर बुद्धियों ने। क्या बड़े बड़े ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, ऐसे भीत के समान, दीवाल के समान ज्ञान के रास्ते में, ईश्वरीय ज्ञान के रास्ते में अड़कर खड़े हो गए, न खुद समझने के लिए तैयार और न दूसरों को समझाने देते हैं। उनकी यादगार है कि वो दीवाल की पूजा करते हैं। मस्जिद बनाते हैं तो क्या करते हैं? एक सामने दीवाल खड़ी कर देते हैं, उसी की पूजा करेंगे, उसी को मानेंगे। उनका कहना है ये दादी मानेंगी तब हम मानेंगे, दीदी दादी नहीं मानेंगी तो हम भी नहीं मानेंगे। और वो दीदी दादियां क्या करती हैं? न खुद सुनती हैं न दूसरों को सुना नहीं देती है। तो ऐसे पत्थर ठिककर बुद्धि भीतर बुद्धियों ने भगवान बाप का जो प्रैक्टिकल रूप है उसको रुलाए दिया है। वो रोता है, है? आत्मा को बाप रोता है, उसके रोने की तो बात ही नहीं। तो किसके रोने की बात है? जिसमें प्रवेश करता है उसको रुलाए दिया है। तो मूल बात यह है कि पहले ये बात समझाओ कि तुम्हारा बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा भी देगा ना। वर्षा क्या है? स्वर्ग का वर्षा, सुख का वर्षा, अनेक जन्मों का सुख का वर्षा, एक जन्म का नहीं, वो बेहद का बाप ही देता है। तो जिसके पास होगा वो देगा, या जिसके पास होगा ही नहीं वो देगा, है? वो आत्माओं का बाप शांति धाम का वासी है या सुख धाम का वासी है? है? शांति धाम का वासी है। वो ज्ञान दे करके कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, आत्मा गले का हार है, वो आत्मा समझकर गले का हार डाल लो तो क्या होगा? है? दुखी होंगे? नहीं होंगे। देहवान आता है तो दुख आता है, तो वो आत्माओं का बाप है। आत्माओं का बाप शांति धाम का वासी है, शांति धाम में ले जाकर बच्चों को रखता है, और सुखधाम, सुखधाम का वासी सुखधाम में बच्चों को ले जाता है। खुद सुखधाम का वासी नहीं होगा तो बच्चों को वर्षा देगा? नहीं दे सकता। तो देखो, ये पति से पावन बनाने की बड़ी सीधी युक्ति है, और विलायत वाले भी सब जानते हैं कि भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या? पुराने थे, पुराना योग। इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म वालों से भी पुराना धर्म, पुराने थी पुराना, प्राचीन युग। किसका सिखलाया हुआ है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि ने नहीं सिखलाया, भगवान बाप का सिखलाया हुआ योग है। किसका सिखलाया हुआ? भगवान बाप का सिखलाया हुआ योग। वो योग का भंडार है। क्या? क्या है? योग का भंडार है। मनुष्य सृष्टि का बाप योग की प्रैक्टिस करके योग का भंडार बनता है। आत्माओं का बाप योग नहीं लगाता, योग की प्रैक्टिस करता है? नहीं, वो योग का भंडार नहीं है। योग माने लगाओ, लगन, प्यार। वो आत्माओं का बाप प्यार का सागर है या ज्ञान सूर्य है? है? ज्ञान का सागर है। सागर तो धरणी से चिपक के रहता है। अरे, सागर धरणी माता को गोद में लेके रहता है या नहीं रहता है? तो सूर्य है या सागर है? वो सूर्य है, वो ज्ञान सूर्य सदैव डिटैच है, और सागर धरणी से अटैच है। वो सागर ज्ञान का सागर, सुख का सागर भी है। क्या? सुख का सागर भी है, प्यार का सागर भी है। प्यार जो है वो इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियों में सबसे बड़ी इंद्रिय मन के द्वारा होता है या बिना इंद्रियों के होता है? है? मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा प्यार होता है। बाप भी कहते हैं सुख लेना है, सुख देना है। इंद्रियों के द्वारा ही सुख लेंगे देंगे कि बिना इंद्रियों के सुख दुख का लेन होता है, लेन देन होता है? इंद्रियों के द्वारा सुख का लेन देन होता है। तो सुख का देना और 21 जन्मों तक सुख का देना, ये कौन दे सकता है? कौन सी आत्मा दे सकती है? आत्माओं का बाप, या आत्माओं का बाप जिसमें प्रवेश करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, जिसमें प्रवेश करता है उसकी बात है। प्रवेश करने मात्र से कोई सुख की दुनिया में नहीं जाता। कितने साल हो गए प्रवेश किए हुए? 80 साल हो गए। प्रवेश करने से कोई सुख की दुनिया में चला गया? गया नहीं। प्रवेश करने से कोई सुख की दुनिया में नहीं जाता। कब जाता है? जिसमें प्रवेश करता है वो बाप समान बने। कैसा बने? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बने। तो जब वो स्वयं बनता है तब सुख शांति से भरपूर दुनिया का निर्माण करता है। ऐसा संगठन तैयार करता है जिसे राजधानी कहा जाता है। दुनिया की, दुनिया में जितने भी देश हैं, उन देशों की जितनी भी अलग अलग राजधानियां हैं, उन राजधानियों में सबसे जास्ती पावरफुल राजधानी, सबसे जास्ती पावरफुल संगठन इकट्ठा करता है। संगठन माने यूनिटी। यूनिटी कैसे बनती है? प्योरिटी से यूनिटी बनती है। तो वो प्योरिटी का जो आधार है, पवित्रता का सागर है, उसकी यादगार शिवलिंग है। क्या? वो एवर प्योर है। प्रैक्टिकल में सिर्फ कहे एवर प्योर, एवर प्योर, एवर प्योर तो कोई मानेगा? कर्म करके दिखाए ना एवर प्योरिटी का। तो वो कर्म है जो प्रबल कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय नहीं। प्रबल कर्म इंद्रिय कौन सी? काम इंद्रिय। जिस काम इंद्रिय के ऊपर कोई विजय नहीं पाता, कोई काम विकार को भस्म नहीं करता, उस एक का ही यादगार है कामदेव को भस्म किया। तो कोई बाहर का मनुष्य था या अंदर की चीज है? है? वो अंदर की चीज है, उसको भस्म किया, राख बना दिया। जो अनेक जन्मों तक वो कामांग और वो कामना रहती ही नहीं, मर्ज हो जाती है 21 जन्मों के लिए। क्यों बताया? ये राजयोग इंद्रियों के ऊपर जीत पाने वाला, खासकर इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत, काम इंद्रियों को जीतने वाला राजयोग किसका सिखलाया हुआ है? राजयोग। ज्ञान की बात नहीं बताई। ज्ञान कौन सिखलाता है? जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा और त्रिकालदर्शी है। और योग कौन सिखलाता है? हैं? जो योग लगाने में, लगाव लगाने में 500 करोड़ के मुकाबले सबसे आगे जाए, और मनुष्यात्माएं जीवन में लगाव लगाती है। पुरुष है तो स्त्री से लगाव लगाता है, स्त्री है तो पुरुष से लगाव लगाती है। एक पुरुष जैसे निजाम बादशाह 500 स्त्रियों से लगाव लगाता है। राजाओं ने, भारत के राजाओं ने सैकड़ों रानियां रखी, उनसे लगाव लगाया। लेकिन प्रवृत्ति मार के पक्के होकर के रहे या ठोकर मार के निकाल दिया है? कैसा योग लगाया है? जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन्होंने जिनसे भी स्त्री पुरुष ने आपस में योग लगाया, एक दूसरे को धक्का मारा या नहीं मारा? और भगवान ऐसा प्रवृत्ति मार्ग अपनाता है प्रैक्टिकल जीवन में कि 16,000 कन्याओं माताओं के साथ ऐसा बुद्धि योग लपेटता है अपने में कि उनमें से किसी को भी धक्का देके बाहर नहीं निकालता। धक्का मारता है नहीं, सबके साथ निभाता है। तो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का हुआ या कच्चा हुआ, वो है प्रवृत्ति मार्ग का पक्का। बाकी सब प्रवृत्ति मार्ग के कच्चे हैं। प्र माने प्रकष्ट, वृत्ति माने गोला। इसलिए शिव के मंदिर में शिवलिंग जो रखा जाता है वो गोलाकार, और उसमें शिवलिंग रखा हुआ है, वो प्रवृत्ति है। वो दूरवाद खुशवाद निवृत्ति वाला सन्यासी नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग बड़ा या सन्यास बड़ा, ज्यादा सुख किसमें है? प्रवृत्ति मार्ग में ज्यादा सुख है, क्योंकि भगवान ने प्रवृत्ति का रास्ता दिखाया पांडवों को, निवृत्ति का रास्ता नहीं सिखाया। तो बताया कि वो योग किसका सिखाया हुआ है? भगवान का। किसका सिखाया हुआ? भगवान का। धनवान का? धन वाले का नहीं। क्या नाम दिया? भगवान। भग, भग कहा जाता है स्त्री के अंग को। भगवान है वो, कोई धनवान नहीं है वो। भगवान क्या सिखाता है? पक्का प्रवृत्ति मार्ग में रहना सिखाता है। अभी उस भगवान को कोई जानते ही नहीं क्या? ऐसी दुनिया विविचारी बन गई है, दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा से। क्या वाचा से भी विविचारी बनते हैं? रज रज के उन्हीं से बातें करेंगे जिससे लगाव लगा होगा, औरों से बात नहीं करेंगे। दिल की बातें किसे बतावेंगे? जिससे दिल लगा होगा उस दिलावर को बता देंगे। तो देखो जो भगवान है राज योग सिखाने वाला, उसको तो कोई भी नहीं जानते। कृष्ण को जान लिया, किसको जाना? कृष्ण को जान लिया, जो भगवान का बच्चा बनता है। शतयुग में पहला पत्ता 500-700 करोड़ पत्तों का बड़ा भाई कौन? कृष्ण। तो उसको तो जान लिया मनुष्यों ने, भगवान, लेकिन उस 16 कला संपूर्ण को, 16 कला संपूर्ण बनाने वाले को कोई नहीं जानता। कृष्ण बच्चा है जिसकी पूजा होती है या बड़े रूप की पूजा होती है? हैं? बच्चा की पूजा होती है या बड़े रूप की? बड़े रूप की पूजा होती है, बच्चा की पूजा होती है। इसका मतलब है वो बच्चा बुद्धि है क्या? राज की बातों को समझने वाला नहीं है वो। बच्चा बुद्धि कृष्ण को पहचान लिया, भगवान मान लिया, लेकिन वास्तव में जो बच्चा बुद्धि है वो राजयोग कैसे सिखाएगा? स्त्री पुरुष बचपन में राजयोग सीख सकते हैं क्या? स्त्री का पुरुष से लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, पुरुष का स्त्री से अटैचमेंट होता है। ऐसा अटैचमेंट होता है जिंदगी में कि जब मृत्यु का टाइम आता है तो स्त्री को वो पुरुष अंग याद आता है, तो पुरुष का जन्म मिलता है। पुरुष को स्त्री का अंग याद आता है तो स्त्री का जन्म मिल जाता है। तो देखो ये लगाव का इतना भारी प्रभाव है क्या? जीवन में जिसे जास्ती याद किया होगा वो अंत समय में याद जरूर आएगा। तो देखो ये देह के संबंध की बात हो गई। अब भगवान बाप आत्मा बनाने के लिए आया हुआ है, तो आत्मा बनाने के लिए क्या करता है, क्या करना सिखाता है? यही सिखाता है कि देह धारण करते हुए, देह में रहते हुए ऐसी प्रैक्टिस करो कि अभी अभी सहकारी सहकारी इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, अभी अभी एक सेकंड में निराकारी बिंदु बन जाओ। देह देह की कर्म इंद्रियों से कोई लगाव नहीं। कर्म इंद्रियों का सुख एक क्षण भी न खींचे। अभी अभी आकारी बन जाओ। आकारी माने मनन चिंतन मंथन में मस्त हो जाओ। तो बाप तो हमको ऐसा सिखाते हैं, घड़ी में साकारी बनो, घड़ी में निराकारी बनो, घड़ी में आकारी बनो। अभी अभी मनन चिंतन करने वाले आकारी, अभी अभी कर्म इंद्रियों से कर्म करने वाले साकारी, और अभी अभी निराकारी। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, देह का कोई कनेक्शन नहीं, देह देह की इंद्रियां याद ही ना आए। तो ये योग भगवान बाप सिखाते हैं। सभी ये जो ऋषि मुनि साधु संत जाते हैं ना विलायत में जाते हैं, वहां भी कृष्ण की बात करते हैं। कहते हैं गीता ज्ञान कृष्ण ने दिया। क्या कहते हैं? गीता ज्ञान कृष्ण ने दिया। अब वो खुद ही नहीं जानते कि कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है, उसको 16 कला संपूर्ण किसने बनाया? 16 कला संपूर्ण तो देवताएं होते हैं, भगवान नहीं। कलाओं में बंधे हुए देवात्माएं हैं या भगवान कलाओं में बनता है? सूर्य कलाओं में बनता है या चंद्रमा कलाओं में बंधता है। तो देखो जो 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है खुद कलाओं के बंधन में नहीं है, कलाओं से भी ऊपर है। वो कौन से युग में प्रत्यक्ष होता है? संगम में प्रत्यक्ष होता है। संगम में 16 कलाओं से भी ऊपर जो स्वयं बनता है वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म देता है, रचना रचता है। इसलिए जो कलाओं में बंधा हुआ है वो कृष्ण वाली आत्मा दिन प्रतिदिन जन्म जन्मांतर नीचे गिरती है या ऊपर उठती है, क्योंकि कलाओं में बंधी हुई है। और जिसको गाया जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, क्या कलाओं से भी परे कलातीत, कैसा कलाओं से परे कैसा सुख देता है? अरे गोपियों का कैसा सुख गाया हुआ है? अति इंद्रिय सुख है, इंद्रियों से भी परे का सुख, चाहे कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, उन इंद्रियों से भी ऊंचा सुख जो संगम युग में ही भगवान के द्वारा प्राप्त होता है वो देता है। तो देखो कहां कृष्ण कलाओं में बंधा हुआ और कहां कलाओं से परे भगवान, कितना वास्ट अंतर है। अभी तुम ही सिर्फ हो जो कहते हो कृष्ण भगवान वाच नहीं है, क्या कहा? तुम बच्चे ही हो जो कहते हो कृष्ण अर्थात कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की आत्मा भगवान नहीं है। कौन है भगवान? है शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, वो ही भगवान है। उसका नाम शिव के साथ क्यों जोड़ा जाता है? एक ही आत्मा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में भी कोई नहीं है, 500-700 करोड़ मनुष्यों में भी कोई आत्मा नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। किसका जोड़ा जाता है? एक शंकर का नाम जोड़ा जाता है। और शंकर भी वो नहीं जो पुरुषार्थी है, वो शंकर जो संपन्न स्टेज धारण करता है। कैसी संपन्न स्टेज? मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, बैल अर्थात ब्रह्मा कहो, उसके ऊपर सवार हो जाता है। तब कहा जाता है मन को जीत लिया। क्या किसने जीता? मन रूपी बैल या घोड़े के ऊपर कौन सवार हो गया? शंकर सवार हो गया। लेकिन शिव सवार हो गया है? शंकर सवार हुआ। इसलिए बैल के कंधे पर शिवलिंग दिखाते हैं। क्या वो शिवलिंग जो है वो किसकी यादगार है? बैल पर सवार होने की यादगार है। शिव बैल जानवर पर प्रवेश करता है, शिव जानवर में आता है जो मनन चिंतन मंथन कर ही नहीं सकता। जानवर में आता है या मनुष्य में आता है? हैं? मनुष्य में आता है। तो वो मनुष्य है, मनुष्य सृष्टि का बीज, जिसको भारतीय शास्त्रों में शंकर नाम दिया हुआ है। शंकर नाम क्यों? 3 आत्माओं का संकरण है। कौन कौन सी तीन आत्माएं? शिव, जिसको कहते हैं त्रिनेत्र, सदा शिव खड़ा हुआ नेत्र या बेड़ा बेड़ा पड़ा हुआ नेत्र? खड़ा हुआ नेत्र, सदैव ज्ञान युक्त, अज्ञान की नींद कभी सोता ही नहीं। शिव बाबा क्या कहते हैं? मैं जब आता हूं तो मैं रात दिन सेवा करता हूं। सोता है वो? नहीं सोता। तो आप समान जिसे बनाएगा वो भी निद्राजीत बनेगा या नहीं बनेगा? वो भी निद्राजीत बाप समान शिव बन जाता है। इसलिए बैल के ऊपर, वो जानवर के ऊपर सवार जो शिवलिंग जैसा क्या होता है, गुम्मड़ क्या होता है बैल के ऊपर? है बैल के ऊपर शिवलिंग जैसा गुम्मड़ होता है ना, वो कौन सी आत्मा की यादगार? ब्रह्मा तो खुद ही बैल है, उसके कंधे पर कौन सवार है? निराकार शिव, ज्योतिबिंदु। वो जानवर पर सवार होता है? वो जानवर सवार होकर के प्रत्यक्ष नहीं होता, वो तो मनुष्य में ही प्रत्यक्ष होता है। क्या? तो वो मनुष्य आत्मा कौन है जो बैल के ऊपर गुम्मड़ के रूप में शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है? कौन है? शंकर है। और शंकर पर कौन सवार होता है? शिव सवार होता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में शिव, ज्योतिबिंदु और शंकर की आत्मा जो शरीर का नाम है, दोनों को मिला के एक कर दिया। जैसा शिव वैसा शंकर रूप धारण कर लेता है तो शिव शंकर कहा जाता है। लेकिन पहला नाम किसका? शिव का नाम पहला, शंकर का नाम बाद में। आज भी दुनिया में ये परंपरा चली आ रही, बाप का नाम देते हैं सोनलाल एंड सन्स कंपनी। क्या? बाप का नाम पहले और बच्चों का नाम बाद में। कर्म का नाम रखते हैं, दुकान का नाम रखते हैं, तो ऐसे ही रखते हैं, बाप का नाम पहले बच्चों का नाम बाद में। तो ये परंपरा कहाँ शुरू हुई? शिव जब आते हैं तो ये परंपरा शुरू करते हैं। शिव का नाम बाप का पहले और शंकर बच्चे का नाम बाद में। तो देखो अभी तुम हो जो जानते हो कि कृष्ण भगवान वाच नहीं है, शिव भगवान वाच है। कौन वाच करता है? है शिव वाच करता है। शिव तो बिंदी है, उसको तो शरीर और इंद्रियां हैं ही नहीं, तो वाच कैसे करेगा? अरे आत्मा निराकार है, शरीर धारण न करे तो आत्मा कोई कर्म करेगी? नहीं करेगी। ऐसे ही आत्माओं का बाप भी निराकार है, वो जब तक शरीर धारण न करे तब तक कोई भी ज्ञान सुनाए ही नहीं सकता। तो ऊंचे ते ऊंचा वो भगवंत है जो भगवंत क्या करता है, जिस ऊंचे ते ऊंचे को सारी दुनिया याद करती है। अब बताओ सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं साकार को याद कर पाएंगी या निराकार बिंदु को याद कर पाएंगी? है साकार को याद करना सहज होता है और निराकार को याद करना कठिन होता है। तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उस साकार को पहचानेंगे जो साकार के द्वारा ये बात बताई जाती है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा, अर्थात उसके मन में क्या समाया हुआ है, जो कहता है मेरे मन में समा जा, उसके मन में बिंदु समाया हुआ है। क्या समाया हुआ है? बिंदु समाया हुआ है। तो उस बिंदु में तू भी समा जा। किस में समा जा? बिंदु में समा जा। बिंदु में समा जाएगा तो निराकारी आत्मा बनना पड़े या नहीं बनना पड़े, देह का भान छोड़ना पड़े या नहीं छोड़ना पड़े, और देह का भान पुरुषार्थ करके अभ्यास करके नहीं छोड़ता है तो देह के कर्म भोग से छोड़ना पड़ेगा। क्या बीमारी बीमारी से छोड़ना पड़ेगा, उससे भी नहीं पूरा होता है तो धर्मराज के दंडों से देह का जो भान है वो छांट दिया जाएगा। आत्मा का जो छिलका है देह भान, वो सारा उतर जाएगा। बीज आत्मा है ना, है? तो कोई बीज में कितने भी मोटे छिलके वाला हो, उसमें लगातार डंडे मारे जाएंगे तो क्या छिलका उतरेगा कि नहीं? तो ये धर्मराज के डंडे दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, आठ को छोड़कर सबके देहभान को छिलके को उतार देता है। वो धर्मराज कौन है? धर्म का राजा। धर्म माने धारणा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, वो तो भूत प्रेत जैसा बन गया। भारत में भूत प्रेतों की पूजा होती है कि साकार देवताओं की पूजा होती है? विदेशी लोग भूत प्रेतों को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं, वो देवताओं को नहीं मानते। तो देखो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले जो भी दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, सब धर्मों से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं, वो ब्राह्मण बनकर के ब्रह्मा की गोद में खेली हैं। उन्हें गोद का नशा है, क्या ब्रह्मा की देह का नशा है, लेकिन ब्रह्मा के मुख से जो भगवान शिव की वाणी निकली है उस वाणी का मजा नशा नहीं चढ़ता है। तो जिनको मुख से सुनाई हुई भगवान की वाणी का नशा चढ़ता है वो मुखवंशावली ब्राह्मण, और जिनको गोद का नशा चढ़ता है वो कुखवंशावली ब्राह्मण। तो कोख नीचे है और मुख ऊपर है, तो ऊंचे कौन हुए? मुखवंशावली ऊंचे हुए और कुखवंशावली नीचे हुए। इसलिए जो मुखवंशावली है उनकी यादगार है रुद्राक्ष। क्या रुद्राक्ष के मन के देखे हैं? उसमें मुख बने हुए होते हैं। क्या मुख बने हुए होते हैं? वो मुख लेने की यादगार है रुद्राक्ष के मन के। कोई में एक मुख, वो बहुत मुश्किल से मिलता है किसी को। कोई में दो, कोई में चार, कोई में चौदह, कोई में दस, अनेक मुखों वाले भी माने एक मुख से बात करते नहीं है, अनेक मुखों की बात करते हैं। कोई दो दो बातें बोलता है तो कहते हैं दो मुहा है। क्या कहते हैं? है दो मुंह से बात करता है। तो एक बात करने वाला एक मुख अच्छा या अनेक बात करने वाला अच्छा? एक बात करने वाला सच्चा, बाकी सब झूठे। तो एक है सदगुरु, सदगुरु मानते हैं एक सदगुरु निराकार। क्या एक सदगुरु निराकार? सत्य गुरु एक ही है, बाकी सब गुरु, बाकी सब झूठ। तो एक जो सदगुरु है वो सदगुरु दलाल के रूप में मिलता है, साकार रूप में मिलता है, या निराकार आकार होता है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, तो कौन सा मेला प्रसिद्ध है? है कौन सा मेला प्रसिद्ध है? अरे हाँ, और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। वो गंगा सागर में ज्ञान गंगाओं को धारण करने वाला, वो सागर जो नदियों से मिलता है, पहले नदियां टकराती हैं क्या? गंगा सागर मेले में जो गए होंगे वो जानते होंगे कि नदियां जो हैं उछाल मार करके पानी का बड़ा भंडार लेकर के सागर से टकराती है, और सागर ऊंची ऊंची लहरों से टकराता है। तो दोनों के टकराने से बड़ी ऊंची ऊंची दीवार जैसी खड़ी हो जाती है, क्या? विघन की दीवार खड़ी हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते हैं सच्चाई क्या है। फिर टकराते टकराते नदियां सागर में समा जाती है, तो वो गंगा सागर मेला प्रसिद्ध है। वहां मेल होता है, सागर और नदियों का मेल होता है। नदियों में तालाब मिल जाते हैं, पोखरे मिल जाते हैं, झीलें मिल जाती हैं, और नदियां किससे मिलती हैं? सागर से मिलती हैं। तो अभी संगम युग की प्रैक्टिकल बातें हैं, इसलिए वो ज्ञान सागर पतित पावन है। नदियां पतित पावनी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान सागर जो है चैतन्य, वो मनन चिंतन मंथन करके अमृत निकालता है, मक्खन निकालता है, सार निकालता है। नदियां तो पानी की है, पानी को बिलोने से मक्खन नहीं निकलता। तो बाबा ने बताया कि ये नदियां पानी की हैं, ज्ञान जल की नदियां हैं, भले वो ब्रह्मपुत्र ही क्यों न हो। क्या? ब्रह्मा से पैदा होने वाला पुत्र या ब्रह्मपुत्री ही क्यों न हो, लक्ष्मी ही क्यों न हो, वो भी मनन चिंतन मंथन नहीं करती। मनन चिंतन मंथन करके ईश्वर के ज्ञान को अपना नहीं बनाती। कौन बनाता है? ज्ञान सागर है जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है। कौन सा मंथन हुआ? सागर मंथन हुआ। वो चैतन्य ज्ञान सागर है जिसके मंथन की बात है। क्या? उस मंथन में देवताएं भी भाग लेते हैं और असुर भी भाग लेते हैं। देवताएं क्या लेते हैं? अमृत लेते हैं, अमृत कलश। और असुर क्या लेते हैं? हैं? क्या लेते हैं? हाँ, जो असुर हैं वो शराब का घड़ा लेते हैं, वारुणी लेते हैं, तो देखो ये अंतर है। जो अंतर तुम जानते हो, तुम कहें उसके सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, थ्री फ्लोर, तीन फ्लोर हैं। किसके? जैसे कि ऊपर वाला जो है आत्माओं का बाप, वो सुखदाम का मालिक है, दुखदाम का मालिक है, वो सिर्फ शांति धाम का मालिक है, और तुम त्रिलोकीनाथ हो। तुम क्या बनते हो? नंबर वार त्रिलोकीनाथ। तुम शांति धाम के भी मालिक हो, सुखदाम का भी मालिक हो, और तुम दुखदाम का भी। ये तीन फ्लोर हैं। मंदिर होती है ना, ऐसे ये तीन मंजिलें हैं। ये तीन मंजिलों वाली सृष्टि यहाँ है। वो तो बाप ने समझाया ना बच्ची, ये सूक्ष्म वतन में पीछे जाते हैं। कौन कौन जाते हैं पीछे? है सभी मनुष्य आत्माएं जो शरीर छोड़ती हैं महामृत्यु में, वो पहले सूक्ष्म वतन में जाके इकट्ठी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, भूकंप होते हैं, उस भूकंप के एक्सीडेंट में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं अचानक। तो भूत प्रेत बनेंगे या नहीं बनेंगे? अचानक मौत वालों को भूत प्रेत बनना पड़ता है। वो भूत प्रेत वाली आत्माएं, आकारी आत्माएं सूक्ष्म वतन में जाके ठहरती हैं। और पीछे कौन जाता है? है? ये इशारा दिया, ये सूक्ष्म वतन में पीछे जाते हैं। जब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब जाकर के सूक्ष्म वतन में ठहरती हैं, तब अंत में सभी मनुष्य आत्माओं का बाप पीछे से जाता है। जब यहाँ से जाते हैं तो चलो सूक्ष्म वतन में ही ये बैठ करके ट्रिब्यूनल बनती होगी। क्या ट्रिब्यूनल? जो फैसला करती है हर एक मनुष्य आत्मा का कि किसने कितने पाप किए, किसने कितने पुण्य किए, उसका हिसाब किताब चुकतू करती है, फैसला दे करके ट्रिब्यूनल बैठती है। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूनल है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा की नीचे पुरी, उससे ऊपर विष्णु की पुरी, उससे ऊपर शंकर पुरी। इस ट्रिब्यूनल में मनुष्य आत्माएं सजा खाती हैं, फलाना करती हैं, सजाओं की भयंकरता नहीं बताई, सिर्फ फलाना कह के छोड़ दिया, नहीं तो बच्चे डर जाएंगे। ये साक्षात्कार की बात समझो। तो चलो हम कहेंगे, अच्छा जब ये खलास होते हैं, कौन? जब ये ट्रिब्यूनल में बैठने वाले ये भी सूक्ष्म वतन से अलग होते हैं, खलास होते हैं, तो सूक्ष्म वतन में भी तो कुछ रहता होगा ना? तीन पुरियां हैं सूक्ष्म वतन की, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। ब्रह्मापुरी साकार दुनिया के नजदीक, और शंकरपुरी निराकारी दुनिया के नजदीक, और विष्णुपुरी दोनों के बीच में। तो बताओ सूक्ष्म वतन में जब सब आत्माएं छोड़ करके मूल वतन में जाती हैं, तो सूक्ष्म वतन में कौन ठहरता होगा? कुछ तो होता होगा ना सूक्ष्म बतन में। तो सूक्ष्म बतन में ट्रिब्यूनल बैठती है, सजाएं खा करके पीछे प्योर होकर के चले जाते हैं ऊपर में, वो भी तो सूक्ष्म बतन है ना, वहां भी तो कुछ काम होता होगा ना। कहां? सूक्ष्म बतन की ऊपरी पुरी में, शंकरपुरी में। चलो, ये सूक्ष्म बतन में ट्रिब्यूनल बनती बैठती है, ये सब सजाएं खा करके साफ होकर के चले जाते हैं, देह अवयव का कचरा साफ होकर के सभी आत्माएं चली जाती हैं, जाना तो सबको है। क्या जाना? तो सबको है ना, झुंड जाना है, बहुत ही झुंड के झुंड। नंबर वार आया है तो सबको ले जाएगा ना। क्या आया है तो सबको ले जाएगा ना, सब बच्चों को ले जाएगा ना। जब तलक सब बच्चे न ले जाएं तब तलक स्वर्ग कैसे बनेगा? क्या सारी मनुष्य आत्माएं इस पांच तत्वों की सृष्टि को छोड़कर कहां चली जाती है? आत्मलोक में चली जाती है। सबको जाना है, झुंड के झुंड जाना है। आया है तो सब बच्चों को ले जाएगा है। जब तक सब न जाएं तो स्वर्ग कैसे बनेगा है? ले जाता है सबको ऊपर ले जा करके स्वर्ग बनाता है, है? तो फिर स्वर्ग कौन बनाता है, है? हाँ, वो जो मूल वतन के सबसे नजदीक है उसको मूल वतन में मूल स्टेज में आत्म की स्थिति में रहना सहज हो जाएगा कि दूसरी आत्माओं को सहज होगा? तो बताया ये संगम युग का ये टाइम लेते हैं तो स्वर्ग और नरक हो जाता है। बाबा समझते हैं कम से कम 100 वर्ष तो जरूर देना चाहिए इस संगम को। कितने वर्ष? 100 वर्ष तो जरूर देना चाहिए इस संगम को। पुरुषोत्तम युग ये युग को कम से कम 100 वर्ष तो देना ही चाहिए। क्या नाम दिया युग का? पुरुषोत्तम युग। कब से शुरू होता है? हैं? कब से? 2018 से। अब तक संगम युग था ही नहीं। कलयुग और सतयुग का संगम नहीं था अभी तक है। पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष माने शरीर रूपी पुरी और उसमें शयन करने वाला ऐसी आत्मा जो शरीर रूपी पुरी में आराम से विष्णु के मुआफिक शयन करे। क्या? शरीर रूपी पुरी में शयन करती है ना आराम से विष्णु, काय के ऊपर शयन करती है, सर्प सर्पणियों की शैया के ऊपर शयन करती है। नहीं तो कही कि रजाई में सांप घुस जाए और उसे पता चले सांप आ गया तो उठ के भाग खड़ा होगा, रजाई वजाई छोड़ के चाहे कितनी भी ठंड हो, और वो इतनी सर्प सर्पणियों के बीच में आराम से शयन करता रहता है। ऐसी आत्मिक स्टेज तो वो बताया पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पार्टधारी विष्णु। विष्णु की तो चार भुजाएं हैं, कोई लेफ्ट कोई राइट, भुजाएं माने मददगार, मददगार आत्माओं को ही भुजा कहा जाता है। तो भुजाएं श्रेष्ठ हैं या भुजाओं को चलाने वाला कोई ऊपर है वो श्रेष्ठ है? तो जो चलाने वाला ऊपर है उसकी बात हो रही है। उस पुरुषोत्तम युग को 100 साल कम से कम दे तो वो विष्णु रूप लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप कब से प्रत्यक्ष होता है? अरे अरे मुरली भूल गई, जिसमें बताया आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए तब लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ है। तो उससे पहले क्या किसी को पता था कि पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा कौन? नहीं पता था ना, तो कब से पता चला है? 76 से। तो 76 से 100 साल और जोड़ो पुरुषोत्तम संगम युग के, कम से कम इतने साल तो जरूर लगेंगे। जो नरक की दुनिया खलास हो और स्वर्ग की दुनिया स्थापन हो, पुरुषोत्तम युग है। जो ये कचड़पट्टी है सब साफ होकर के क्या 500-700 करोड़ क्या है? है क्या है? 8 को छोड़ करके सब क्या है? है कचड़पट्टी। और वो 8 भी माया के गाल में जाते हैं या नहीं जाते हैं? वो भी चले जाते, तो कौन बचा है? एक बचा। क्या जन्म हुआ? 1976 में उन आत्माओं को अंदर अंदर ये प्रत्यक्षता हो गई क्या कि हमारा पार्ट लक्ष्मी और नारायण, ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब से हुआ तब से सच्चा सच्चा पुरुषों में उत्तम पार्टधारी पुरुषोत्तम ही उसे, उससे पहले किसी को पता ही नहीं था पुरुषोत्तम कौन है। जब पता ही नहीं था तो पुरुषोत्तम युग कहेंगे, सामान्य युग कहेंगे, संगम युग, लेकिन पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। तो 76 से लेकर 100 साल और 2076 कितना आया? 2076। अभी तक क्या समझते थे? छत्तीस से लेकर के 2036 समझते थे, लेकिन 1936 में तो पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ। हुआ ना है? हाँ, ब्रह्मा वाली आत्मा ने, कृष्ण वाली आत्मा ने समझ लिया कि मैं 16 कलर संपूर्ण नारायण बनूंगा, मैं शिष्य के शिष्य पाठधारी हूँ, हीरो पाठधारी, मैं गीता ज्ञान का रचयिता हूँ, क्या गीता पति भगवान हूँ। लेकिन झूठा समझा या सच्चा समझा? झूठा समझ लीजिए। वास्तव में 16 करा संपूर्ण कृष्ण को जन्म देने वाला रचयिता वो है, नहीं सच्ची का रचयिता है।
हेमिसी वार्ता, वो हेमिसी वार्ता लेवल वहां से जब वो प्रत्यक्ष होता है चैप्टर से, तब से पुरुषोत्तम संगम युग 100 साल का गायन किया। तब तक ये कचरपट्टी साफ साफ होकर के वो जो बचते हैं, दोनों बचते हैं, मुझे भी क्या बोला, वो जो बचते हैं कितने बचते हैं, दोनों बचते हैं, कौन कौन, लक्ष्मी और नारायण, जिनका जन्म प्रत्यक्षता रूपी क्षेत्र में हुआ, वो 100 साल के बाद बचेंगे। सूक्ष्म वतन के ऊंचे से ऊंची स्टेज में वो बचेंगे, क्या और सब कहाँ चले जाएंगे, मूल वतन में वापस चले जाएंगे, साफ कचरपट्टी साफ हो जाएगी। तो जो दोनों बचते हैं उनमें से भी जो वो है, उन दोनों में से भी जो वो है, कौन ऊंचे थे ऊंचा भगवान है, शिव, ये दो कौन बचते हैं, लक्ष्मी नारायण, उन दोनों में से भी जो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत है, हैं? उनमें से भी जो वो है, वो सब चला जाए, क्लियर हो जाए, सब इंद्रिय क्लियर हो जाए, और फिर उनको कहेंगे नई दुनिया में सब नए, क्या इसीलिए बात कहते हैं, कहते हैं बात को याद करो, कहते हैं चरण को याद करो, अपने बच्चे को याद करो, और क्या कहते हैं, अपने घर को याद करो। तो तीन को याद करें या एक को याद करें, वो एक कौन, जो हमारा शांति देवा शांति का घर भी बन जाता है, क्या जिस घर में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा शक्ति वृक्ष के ऊपर बैठे हुए में उसकी याद में समा जाते, तो घर हुआ ना, हैं? घर भी हुआ, बाप को याद करो, वो मनुष्य सच का बाप भी है, और स्वर्ग को याद करो, वो स्वर्ग की स्थिति में गया, कहा गया, स्वर्ग की स्थिति, स्व माने आत्मिक स्थिति में गया, तो स्वर्ग में गया या नरक में गया, स्वर्ग में गया, तो वो हमारा स्वर्ग भी, कौन है हमारा स्वर्ग, कौन है हमारा घर, कौन है हमारा बाप, है कौन, शांति देवा कौन, अरे फिर भूल गए, हाँ वही अव्यक्त मूर्ति, क्या जो अव्यक्त भी है, आंखों से ना आंख कान हाथ पांव दिखाई नहीं देते, लेकिन है तो नाक आंख कान वाला, और अव्यक्त भी है और साकार भी है, क्योंकि बड़ा रूप है, उसमें सारी दुनिया समा जाती है, इसीलिए गीता में लिखा है उस अव्यक्त मूर्ति से सारी दुनिया निकलती है, और सृष्टि के अंतकाल में सारी प्राणी उसमें समा जाती है। तो क्या बचता है, नई दुनिया में सब अब नए रह जाए, भाई पुराने सब भाग गए, तू बताओ नए भी नया कौन नई दुनिया में, और उसके बाद आने वाले पुराने के पुराने कहां से शुरू होते हैं? पुराने से पुराना कौन है? कौन आत्मा है जो पुरानी पुरानी है इससे शुरू की अनुमति पर है? पहले पत्ते का विवाद जो नर से नारायण बना, और उसके बाद जो भी आते हैं क्या जन्म देने वाली आत्माएं हो, चाहे कृष्ण के समान जन्म लेने वाली आत्माएं हो, वो सब पुरानी मानी जाएगी कि नहीं? उसके मुकाबले है, उस एक के मुकाबले पुरानी है या नहीं है? नहीं, तो नई दुनिया में सब नए, भाई पुराने सब भाग गए, तो ऐसे भी नहीं कहेंगे कि नहीं सूक्ष्म मतन को 50 वर्ष दें, नहीं 100 वर्ष लग जाना होगा। कितना? 100 वर्ष लग जाए। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि 50 वर्ष दें कि ब्रह्मा बाबा ने 69 में शरीर छोड़ा, उसमें 50 वर्ष एड किए, तो कौन सा समय है? दो हजार सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा का खतर खलास हो गया, देह का भान उनका खलास हो गया, आत्मिक स्थिति में मनुष्य के बाप समान वो बच्चा स्थिर हो गया, अपने स्वरूप में स्थिर हो गया, बाप को पहचान लिया कि मनुष्य शक्ति में हमारा बाप कौन, हमको जन्म देने वाला जन्मदाता कौन, तो उसमें जब जान जाएगा पहचान जाएगा बाप को, तो जैसे बाप चलाना चाहेगा वैसे चलेगा या अपने मनमत पर चलेगा, चलाएगा वैसे। और अभी तक 18 से पहले अपने सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म देह भान के आधार पर चलता है, क्या सूक्ष्म शरीर में देह भान ज्यादा होता है या स्थूल शरीर में देह भान ज्यादा होता है? भूत प्रेतों में जो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं उनमें देह भान ज्यादा होता है या स्थूल शरीरधारियों में देह भान ज्यादा होता है? जितनी सूक्ष्म होगी उतनी ज्यादा पावर होगी, भूत प्रेत होते हैं वो बहुत पावरफुल आत्माएं होती है, वो सूक्ष्म देहभान जब तक ब्रह्मा में है तो वो 50 वर्ष का देहभान, क्या जो ये मुरली में बाबा ने बोला कोई ऐसी भी आत्मा होगी जो 50 वर्ष का भी संगम में शरीर धारण नहीं, सूक्ष्म शरीर में रहे। उसके बाद एक ही शरीर है, क्या एक ही शरीर है जिस शरीर में वो प्रवेश करता है, कौन जिसके लिए मुरली में अगत वाणी में बोला बाप का जन्म और बच्चे का जन्म इकट्ठा, सभी ब्राह्मण जानने लगेंगे नंबर वन कि वो मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है, पहले पत्ते का भी बाप कौन है, और वो पहला पत्ता कौन है और किस शरीर में पांडव है, साकार शरीर, और उसको